पृष्ठ संख्या 15, अध्याय 2। दरवाजा खुला। आज बड़ी देर लगा दी, प्रमिला ने धीरे से कहा और उन्हीं कदमों घूम गई। उसने आंख उठाकर महेंद्र की ओर देखा तक नहीं। महेंद्र का तनाव कुछ ढीला हुआ। प्रमिला को संदेह नहीं हुआ था। प्रमिला के बाल उलझे हुए थे और उसके कंधे पर धोकर निचुड़े हुए दो तीन कपड़े रखे थे, जिन्हें वह बरामदे में अलगनी पर डालने जा रही थी। उसके हाथ में महेंद्र का एक बनियान था, जिसमें से पानी की बूंदें चू चू कर गिर रही थीं। कपड़े धोते समय बालों को संभाले रखने के लिए प्रमिला ने गर्दन पर कसकर जूड़ा बांध रखा था, मगर बालों की लटें माथे पर और कानों के ऊपर झूल रही थीं। फर्श पर बैठकर कपड़े धोने के कारण उसकी कमीज और सलवार के पाँची गीले हो रहे थे। पीठ पीछे से प्रमिला उसे सुंदर नजर आई। इसके शरीर का गठन शहजादियों जैसा है, उसने मन ही मन कहा। चाल में सहज कमनीयता है। महेंद्र को असीम संतोष का भास हुआ। इसका शरीर सुडौल है, इसके स्वभाव में भी सहज संतुलन है। यह मेरी नाव का लंगर है, यह मुझे कभी भी डामाडोल नहीं होने देगी। उसे लगा जैसे थका मांदा मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। महेंद्र का दिल भर आया। क्षण भर के लिए वह कमरे के बीचों बीच ठिठका सा खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर प्रमिला से लिपट गया और बेतहाशा उसके बाल, उसकी गर्दन, उसके कंधे चूमने लगा। प्रमिला को बाहों में लिए हुए महेंद्र को लगा जैसे पृष्ठ संख्या 16 वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है, किसी अंधेरे गहरे कुएं में, और कोई चीज उसे थाम नहीं पा रही है, रोक नहीं पा रही है। इस गिरते रहने में ही उसे सुख का अनुभव हो रहा था। बताकर तो जाते, इतनी देर से लौटे हो। पप्पू बिना कुछ खाए पिए सो गया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर हो गई। कहो माफ़ कर दिया। और वह प्रमिला को बाहों में भींचे रहा। उसे प्रमिला के कपड़ों से, प्रमिला के शरीर से घरेलू सी गंध आई। आज तुम्हें क्या हो गया है? बहुत प्यार आया है मुझ पर। प्रमिला कुछ देर तक बुत बनी खड़ी रही, फिर महेंद्र का हाथ कमर में से हटाते हुए बोली, देर से आते हो और फिर प्यार दिखाने लगते हो। छोड़ो छोड़ो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। खिड़की खुली है, कोई देख लेगा। तुम मेरी पत्नी ही तो हो, कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, छोड़ो, मुझे काम है, प्रमिला ने उपेक्षा के स्वर में कहा था। प्रमिला की यही बेरुखी, जिस पर वह पहले खीज उठता था, आज उसका सहारा बन रही थी। प्रमिला को बाहों में भरे हुए महेंद्र को अभी भी अपूर्व स्निग्धता और शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे लहरों में गोते खाने वाला आदमी अचानक किनारे आ लगे और मीठी मीठी धूप में सांस लेने लगे। प्रमिला को आलिंगन में भरे भरे महेंद्र उसे सोफे के पास ले गया और उसके कंधे पर से धुले कपड़े उठाकर कुर्सी पर रखते हुए उसे सोफे पर बिठा दिया और स्वयं प्रमिला के पैरों में कालीन पर बैठ गया। हाय, नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो ना, मेरे सिर पर पाप चढ़ाते हो, प्रमिला ने कहा। फिर खिड़की की ओर देखकर लपक कर उठी और उसे बंद करने चली गई। खिड़की बंद करने के बाद वह वहीं खड़े खड़े बोली, किचन की खिड़की भी खुली है, मैं उसे बंद कर दूं? नहीं तो रात को दही नहीं जम पाएगा, सर्दी बढ़ गई है, उसने कहा और उन्हीं कदमों से रसोई घर की ओर बढ़ गई। और रसोई घर में बर्तनों की खटखट सुनाई देने लगी। वह कुछ ही देर में लौट आई और दहलीज पर खड़े खड़े बोली, इतना मोटा चूहा चूल्हे के पीछे बैठा था, रोज यहाँ पहुँच जाता है। सच, आप कुछ भी नहीं करते, मैं कह कह कर थक गई हूँ। आओ ना प्रमिला, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ दो बातें करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पृष्ठ संख्या 17, आती हूँ आती हूँ। पप्पू भूखा सो गया है, उसे दूध पिला दूँ? और उन्हीं कदमों फिर लौट गई। प्रमिला का शरीर गदरा गया था, शरीर की हड्डी जैसे चौड़ी हो गई थी। हाथ उसके पहले से ही बड़े बड़े थे, अब रसोई का काम करने से पहले की तुलना में ज़्यादा रुखड़े और बोझल हो गए थे। चलती तो धीरे धीरे, इसके अतिरिक्त सारा वक्त घर पर बने रहने के कारण उसकी पोशाक में या उसकी चाल ढाल में कोई बांकपन नहीं रह गया था, कोई लड़कियों वाली बात नहीं रह गई थी। देर तक प्रमिला की राह देखने के बाद महेंद्र का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। छोड़ो, यह ना समझेगी, ना माफ़ करेगी। दीवार के साथ सिर फोड़ने वाली बात है। कालीन पर बैठा बैठा वह अटपटा सा महसूस करने लगा। इस तरह की स्थिति आज पहली बार हुई हो ऐसा नहीं था। महेंद्र भावोद्रेक में घर लौटता, प्रमिला के साथ निराले में बैठकर बातें करना चाहता, पर प्रमिला को हमेशा ही अनावश्यक लगा था और वह घर के कामों में उलझी रही थी। शादी के बाद जो कभी खुली खिड़की के सामने महेंद्र प्रमिला को चूम लेता, तो वह भागकर कोने में दबक जाती, महेंद्र के साथ रूठ जाया करती। प्रेम वाक्यों को सुनकर वह अटपटा महसूस करने लगती। शादी के शुरू शुरू के दिनों में दिन के वक्त दफ्तर से लौटकर कहीं महेंद्र उसे बाहों में भर लेता तो डॉट डॉट क्या करते हो, कोई देख लेगा, कहकर उसकी बाहों में से निकल जाती। एक बार टैक्सी में बैठे बैठे महेंद्र ने उसकी कमर में बाह डालकर उसे चूम लिया। इस पर प्रमिला बौखला उठी थी। यह क्या कर रहे हो, उसने छटपटा कर कहा और सीट के एक कोने में दबक गई। नहीं प्रमिला, इसमें बुरा भी नहीं है, तुम मेरी पत्नी ही तो हो। नहीं जी, बस यह बेशर्मी, मैंने कह दिया, मुझे अब हाथ नहीं लगाना। तुम गंदी किताबें पढ़ते रहते हो इसलिए ऐसा करते हो, उसने कहा था। महेंद्र को इन बातों से खीज उठती थी और कभी-कभी वह बौखला उठता था। फिर धीरे-धीरे उसने आग्रह करना ही छोड़ दिया था। महेंद्र चाहता था कि उसकी पत्नी उसमें बाहर की दुनिया में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले, उसकी पसंद के कपड़े पहने, कभी-कभी अपने आप भी उसके गले में बाहें डाल दिया करे, कुछ ज़्यादा चुलबुलापन दिखाए। पर प्रमिला सारा वक्त घर में और बच्चों में ही खोती चली गई थी। रसोई घर में अभी भी बर्तनों की खटखट सुनाई दे रही थी। आज इस पृष्ठ संख्या 18 खटखट को सुनते हुए महेंद्र को प्रमिला से ईर्ष्या हो रही थी। प्रमिला अपने काम में लगी रहती है, उसके मन में दुविधा नहीं उठती, वह छटपटाती नहीं, परेशान नहीं होती। उसके जीवन में स्थिरता है, एक रास्ता है, उसके पास घर का काम है जो उसे सोचने और परेशान होने की फुर्सत नहीं देता। मैं सोचती हूँ तुम भी खाना खा लेते तो अच्छा था, मैं जल्दी काम से निबट जाती। प्रमिला दहलीज पर खड़ी थी। महेंद्र ने सिर उठाया। कभी इन कामों को छोड़ा भी करो, देखती हो मैं घंटे भर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, खाना नहीं खाओगे क्या? इस पर महेंद्र चुपचाप कालीन पर से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ सोने वाले कमरे की ओर जाने लगा। अच्छी बात है प्रमिला, मैं खाना खा लेता हूँ। महेंद्र को खाना खिला चुकने पर प्रमिला फिर चौका समेटने चली गई। महेंद्र थोड़ी देर तक अपने कमरे में टहलता रहा, फिर कपड़े बदलकर कुर्सी पर बैठकर अखबार देखने लगा। फिर वह अखबार छोड़कर बाहर खुलने वाले बरामदे में चला गया और देर तक अंधेरे में टहलता रहा। जब लौटा तो प्रमिला अभी भी रसोई घर में व्यस्त थी। मैले बर्तन रात भर कैसे पड़े रहे, माई कभी आती है कभी नहीं आती, बस अब खत्म हो गया, मैं अभी आती हूँ। फिर वह हंसकर बोली, मैं जानती हूँ क्यों तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। दफ्तर में बनी ठनी लड़कियाँ देखते रहते हो, घर आते हो तो तुम पर भूत सवार होता है। तुम चलो, मैं आती हूँ, पर तुम्हें नींद आई है तो सो जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है। कुछ देर बाद प्रमिला छोटे से तौलिए के साथ हाथ पोछती हुई आई। सर्दी के बावजूद उसकी गर्दन पर और माथे पर नमी आ गई थी और चेहरा तमतमा रहा था। बालों की लटें हाथों से संभालते रहने और बालों के बीच खोसते रहने के बावजूद दोनों कानों पर गिर रही थीं। तुम क्या कहना चाहते थे, कौन सी बात बताना चाहते थे, प्रमिला ने कहा और ड्रेसिंग टेबल पर से कंघी उठाकर अपने बाल काटने लगी। क्या पैसे वैसे खो गए हैं, मैंने कई बार कहा है जेब में बटुआ रखा करो, पैसे बटुए में रहें तो नहीं खोते, इनका हिसाब भी ठीक रहता है। प्रमिला अपने पलंग पर पालथी मारकर बैठ गई थी और बालों में कंघी किए जा रही थी। पृष्ठ संख्या 19 प्रमिला के बाल लंबे थे, जूड़ा करने पर उसके चौड़े वक्ष और सुराहीदार गर्दन पर बड़े सुंदर नजर आते थे, पर कंघी करते समय वही बाल बहुत बैठे बैठे और अटपटे से लगते थे। पप्पू अब की बार फिर गणित में फेल हो गया है, उस्तानी की रिपोर्ट आई है। प्रमिला ने कंघी पर से उतरे हुए बालों को अपनी तर्जनी पर लपेटते हुए कहा, तुम उसे घंटा भर पढ़ा दिया करो ना। मैं उसे पढ़ाती तो हूँ पर वह मेरे काबू में नहीं आता। और बिना महेंद्र की ओर देखे तर्जनी पर बंधे बाल फेंकने बाहर बरामदे में चली गई। महेंद्र के मन को झटका सा लगा। उसके मन में आया, चुप रह जाओ, कुछ भी मत कहो, फिर कभी मौका आया तो कह दूंगा। जो बात उसके दिल को दिन भर कुरेदती रहती थी, घर लौटने पर उसकी खलिश बहुत कुछ कम हो चुकी थी। प्रमिला लौट आई और अपने पलंग पर महेंद्र के सामने बैठती हुई बोली, अब बताओ क्या बात है। कुछ नहीं। वाह जी, अभी कह रहे थे बताऊंगा, तुम्हारा जरूर कुछ खो गया है। क्या खो गया है? पैन वैन खो गया है? दफ्तर में कोई बात हुई है? महेंद्र एकटक अपनी पत्नी की ओर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, फिर कभी बताऊंगा। तो फिर मैं प्रार्थना कर लूं? उसने जम्हाई लेते हुए कहा और बिना महेंद्र के उत्तर का इंतजार किए पलंग पर पालथी मारकर बैठ गई और गोद में दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। सोने से पहले वह रोज प्रार्थना किया करती थी। घंटा भर पहले घर लौटने पर जब महेंद्र ने प्रमिला को आलिंगन में भर लिया था तो उसे असीम सुरक्षा का भास हुआ था, जैसे सैलाब के थपेड़े बंद हो गए हों और नौका को पहले सा संतुलन मिल गया हो। उसे लगा था कि अगर प्रमिला ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं गिर पड़ूंगा, पर अब उसे खींच उठने लगी थी और उसे लगने लगा था कि ऐसी स्त्री के प्रति किसी प्रकार के उत्तरदायित्व की भावना बनाए रखना भूल थी। प्रमिला आंखें बंद किए दोनों हाथ गोद में रखे प्रार्थना किए जा रही थी। महेंद्र उसे बैठा देखता रहा। प्रमिला के होंठ बंद थे और कमान की तरह खींचे थे। कंधे और पीठ पर छितरे बालों और मुचड़े कपड़ों के कारण प्रमिला की देह पृष्ठ संख्या 20 शिथिल सी लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद प्रमिला ने सिर नवा दिया, जुड़े हुए हाथ माथे पर लगाए और आंखें खोल दीं। तुम आजकल क्या प्रार्थना करती हो प्रमिला? झेप से प्रमिला का चेहरा लाल हो गया, फिर मुस्कुराकर सिर झटक कर बोली, पिताजी ने जो प्रार्थना सिखाई थी वही बोल देती हूँ। पिछले 30 बरस से वही प्रार्थना किए जा रही हो? नहीं तो, उसने तनिक झेप कर कहा, थोड़ी बहुत अपनी ओर से भी जोड़ती रहती हूँ। थोड़ी बहुत अपनी ओर से भी जोड़ती रहती हूँ। तुम भगवान से क्या मांगा करती हो? मैं भगवान से सबके सुख की मांग करती हूँ, तुम्हारे, पप्पू के, सबके, डॉट डॉट। मैं घर में जो माई झाड़ू पोछा करने आती है उसके सुख की भी मांग करती हो? हाँ, उसके सुख की भी मांग करती हूँ, अपने संबंधियों के सुख की भी मांग करती हूँ, डॉट डॉट। फिर प्रमिला ने जम्हाई लेते हुए कहा, अभी तक सोए नहीं? सो जाओ ना, रात बहुत हो गई है। महेंद्र चुपचाप उठा और बिस्तर को ठीक करके उस पर लेट गया। बत्ती बुझा दूँ? तुम इतने गुपचुप क्यों हो जाते हो? तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बेशक बत्ती बुझा दो। प्रमिला ने बत्ती बुझा दी और अपने बिस्तर पर जाकर लेट रही। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर के नीचे दोनों हाथ रखे महेंद्र आंखें खोले पड़ा था। प्रमिला के अपने पलंग पर चले जाने पर उससे नहीं रहा गया। लेटे लेटे बोला, प्रमिला देखो, मैं घंटे भर से तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम हो कि चुपचाप अपने पलंग पर जाकर लेट गई हो। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आई है। तुम बोलते बताते तो कुछ हो नहीं। और प्रमिला जम्हाई लेती हुई अपने पलंग पर से उठकर महेंद्र के पलंग पर आ गई। मुझे भी अकेले सोना अच्छा नहीं लगता, प्रमिला ने कहा और महेंद्र के एक हाथ को अपने हाथ में पकड़कर वह महेंद्र की ओर पीठ फेर कर लेट गई। आज कोई खुसुर पुसुर नहीं करना, मेरा मन नहीं है और मैं बहुत थकी हूँ, उसने कहा। फिर थोड़ी देर बाद बोली, जो चाहो तो अपना दूसरा हाथ मेरी गर्दन के नीचे से निकाल लो, बस अब ठीक है। अब मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़े रखूंगी। पृष्ठ संख्या 21, तुम्हें हिलने डुलने नहीं दूंगी, नहीं तो तुम इधर उधर हाथ ले जाने लगते हो। और प्रमिला, पृष्ठ संख्या 21। भावोद्रेक में महेंद्र ने उसे बालों पर चूम लिया और उसका मन आया कि सुषमा वाली सारी बात उसे बता दे, एक बार अपना मन हल्का कर ले। पर 2 मिनट भी नहीं बीत पाए होंगे कि प्रमिला सो गई थी और हल्के हल्के खर्राटे भी भरने लगी थी। प्रमिला के बिस्तर में आने पर उसके कपड़ों से चिर परिचित घरेलू गंध का भभूका सा उठा था। जो सलवार कमीज पहने वह रसोई घर में काम करती थी वही पहने पहनाए बिस्तर में आकर लेट गई थी। उसके हाथों में से भी रसोई की मैले बर्तनों की गंध आ रही थी, प्याज की बू आ रही थी। आज इसने फिर सुहागे से बर्तन मले हैं, महेंद्र ने सोचा। महेंद्र को प्रमिला का सुहागे से बर्तन मलना पसंद नहीं था। इससे प्रमिला के नाखून खुरदुरे और काले पड़ गए थे और सारा वक्त उनमें से बासी सी गंध आती रहती थी। पर प्रमिला जिद पकड़े हुए थी। साबुन से कौन बर्तन धोता है? सभी लोग सुहागे से बर्तन मलते हैं। हमारे घर में भी सुहागे से बर्तन मलते थे। घर में माई भी काम करने आती थी, लेकिन रात को चौका समेटे बिना और उसे धोए बिना प्रमिला उसमें से नहीं निकलती थी, भले ही कितनी देर हो जाए। और महेंद्र उसके इंतजार में पलंग पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। महेंद्र ने एक रोज परेशान होकर कहा था, प्रमिला, तुम्हारे हाथों से सारा वक्त प्याज की बू आती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। रसोई में काम जो करना हुआ, बू तो आएगी ही। अच्छा, हाथों से आए, मुंह में से तो नहीं आए? कम से कम रात के वक्त तो प्याज खाना छोड़ दो। तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, मैं प्याज खाना छोड़ दूंगी, प्रमिला ने हंसकर कहा था। प्याज तो सस्ता होता है, सिगरेटों पर तो पैसे भी बर्बाद होते हैं। फिर प्याज तो बड़ी अच्छी चीज है, प्याज सभी लोग खाते हैं। बाबूजी की थाली में प्याज और हरी मिर्च नहीं रखो तो खाना ही नहीं खाते थे। वह तो बाबूजी थे, उनके मुंह से कैसी बू आ सकती थी, पर मेरे तुम्हारे मुंह से तो आ सकती है। अच्छा, नहीं खाऊंगी जो इतनी तुम्हें बू आने लगी। अंधेरे में आंखें खोले महेंद्र अपने दोनों हाथों में हथकड़ियां बंधवाए चुपचाप लेटा था। कभी मन में खीज उठती कि प्रमिला के जीवन में प्रमुख स्थान चौके बर्तन पृष्ठ संख्या 22 को है या पप्पू को, उसे यह जानने की इच्छा तक नहीं होती कि महेंद्र दिन भर कहाँ भाड़ झोंकता रहा है। उसे भी किसी बात की परेशानी हो सकती है, उसकी भी कोई ज़रूरतें हैं या नहीं। इसे अपने दिल की कैफियत बताने से क्या लाभ, जिसे मुझ में रुचि ही नहीं है। या फिर वह ठंडी सांस भरकर मन ही मन कहता, छोड़ो, कोई लाभ नहीं, यहाँ ऐसे ही चलेगा। यह कभी भी नहीं समझ पाएगी। काठ का दिमाग पाया है इस औरत ने। इसके साथ झूठ बोलो, विश्वासघात करो, तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोए सोए जी रही है। सहसा पप्पू गुनगुनाया। उसकी छोटी सी खाट बगल वाले कमरे में दीवार के साथ लगी थी। प्रमिला झट से उठ बैठी और कूद कर पप्पू के बिछौने के पास जा पहुंची। महेंद्र जल भुन गया। अंधेरे में टटोलते हुए पहले प्रमिला ने कंबल के नीचे हाथ ले जाकर देखा कि पप्पू ने बिस्तर तो गीला नहीं किया है। पप्पू 7 साल का हो चला था, पर उसकी यह आदत अभी तक नहीं गई थी। फिर उसका कपड़ा ठीक करके उसे थपकियां दे देकर सुलाती रही और लगभग 5 मिनट के बाद लौट कर आई और उसी तरह महेंद्र की ओर पीठ करके लेट रही। कैसी हो प्रमिला? आते ही मेरी तरफ पीठ मोड़कर लेट गई हो? तो क्या करूं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। बिस्तर में आती हो और बस हाथ पैर छोड़कर लाश की तरह लेट जाती हो, तो क्या करूं, प्रमिला ने लेटे लेटे कहा। क्या पत्नी का कोई फर्ज नहीं होता? तुम्हें यह जानने की इच्छा भी नहीं होती कि मर्द चाहता क्या है? मैं जानती हूँ मर्द क्या चाहता है, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता। सो जाओ, इसीलिए जड़ की जड़ बनी लेटी रहती हो। फिर शादी ही क्यों की थी? प्रमिला सोए सोए ही हंस दी। शादी तो बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है, तो हर बार तुम बच्चा पैदा करने के लिए ही यह काम करती हो। मैं कहाँ करती हूँ, तुम पर जुनून सवार होता है तो मैं कहती हूँ चलो कर लो, यह कोई अच्छी चीज थोड़े ही है। स्वामी जी ने तो लिखा है कि साल भर में एकाध बार करना चाहिए। कौन से स्वामी जी ने? स्वामी दयानंद जी ने। पृष्ठ संख्या 23। महेंद्र का मन खिन्न हो उठा। उसका मन चाहा अपने बाल नोच ले। तुम इन स्वामी जी को बीच में क्यों ले आई हो? कौन है यह स्वामी जी? बातें तो सब ठीक कह गए हैं। कहते हैं शेर जिंदगी में केवल एक बार करता है, फिर उसका डॉट डॉट उसका अंग ही टूट जाता है। मैं शेर नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ, और तुम भी शेरनी नहीं हो। जो जिंदगी में केवल एक ही बार यह काम करना था तो किसी साधु संन्यासी को ढूंढ लाती। अच्छा छोड़ो अब इन बातों को, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है, पप्पू के लिए खाना बनाना है, कल से वह खाना साथ में स्कूल ले जाएगा। देख लिया, यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें यह जानने की इच्छा तक नहीं होती कि मर्द चाहता क्या है। तुम समझती हो, बस खाना बना दिया, घर को झाड़ पोछ दिया तो तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया। तो क्या किया करूं, तो क्या किया करूं, तुम्हें दिन भर उकसाती रहा करूं, प्रमिला ने हंसकर कहा और करवट बदलकर मुंह महेंद्र की ओर कर लिया। बताओ, तुम्हारे बाल सहलाऊं, तुम्हारी मूछें चूमूं, क्या करूं, मुझे एक बार सिखा दो, मैं वही करने लगूंगी। महेंद्र चुप रहा, उसका मन वितृष्णा से भरने लगा। ठंडी सांस भरकर बोला, तुम तो काठ की बनी हो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने का। महेंद्र के दिल में टीस उठी, यह औरत जानना तक नहीं चाहती कि मेरे मन की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, मैं क्यों दुखी रहने लगा हूँ, मेरी परेशानियों को यह समझती तक नहीं। मैंने कब कहा है कि कुछ करेंगे, मुझे तो अब सच पूछो तो तुम्हारे साथ लेटने की ख्वाहिश तक नहीं होती। प्रमिला फिर हंसती, यह तो तुम हमेशा ही कहा करते हो। फिर उसकी छाती पर सिर रखकर बोली, मुझे तुम्हारे साथ लेटना तो बड़ा अच्छा लगता है, अकेले लेटना अच्छा नहीं लगता, पर तुम निचले सो नहीं पाते, इधर उधर हाथ ले जाने लगते हो। महेंद्र चुप बना रहा। प्रमिला ने महेंद्र की छाती पर सिर रखे ही रखे अपना बायां हाथ उठाया और महेंद्र के बाल सहलाने लगी। पप्पू बिल्कुल तुम पर गया है, उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है, उसका सिर भी पीछे से बिल्कुल तुम्हारे सिर जैसा है, लंबूतरा सा है ना, तो तुम पप्पू के बाल सहला रही हो। पृष्ठ संख्या 24, यही समझ लो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें मालूम है, जिस दिन पप्पू हुआ था उसी दिन से तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। नर्स उसे मेरे सामने लाई तो मुझे लगा यह नन्हा सा महेंद्र मेरी गोद में आ गया है, मुझे बड़ा प्यारा लगा। इससे पहले मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, लगते थे पर बहुत नहीं। प्रमिला का हाथ महेंद्र के बालों पर से हटकर उसके कंधे पर आ गया। मैं क्या करूं, मैं थक जाती हूँ, तुम बाहर से लौटते हो तो रसोई घर में बैठे बैठे ही मुझे झपकियाँ आने लगती हैं, मैं बड़ी मुश्किल से आंखें खोले रह पाती हूँ, खाना खा चुकने के बाद तो मैं जागती रह ही नहीं सकती, जी चाहता है सीधी बिस्तर पर जाकर पड़ रहूँ। ... महेंद्र ने प्रमिला के बाल चूम लिए। 15 साल के विवाहिता जीवन में कभी कभी कुछ क्षण गहन आत्मीयता के उभर आते थे, अमूल्य क्षण जिनमें लगता पति पत्नी एक इकाई बन गए हैं, एक दृढ़ चट्टान की तरह जो बाहर के थपेड़ों से सुरक्षित बनी रहती है। संसार के लोग एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, अतः समुद्र में हिचकोले खाते डूबते उतराते जीव, पर घर के अंदर एक सूत्रता जीवन का सुदृढ़ आधार बन जाती है। मुझे तुमसे कुछ कहना है प्रमिला, कहो भी ना, तुम तो घंटे भर से रट लगाए हुए हो, कहना है मगर कहते कुछ नहीं। और प्रमिला का हाथ फिर महेंद्र के बाल सहलाने लगा और उसने जम्हाई ली। महेंद्र क्षण भर के लिए ठिठका रहा, बीती पर पर्दा डाले रखने के लिए प्रमिला ने उसे मानो एक और अवसर दे दिया था, इसे कुछ न बताऊं। उसके नाटे मित्र का वाक्य फिर एक बार महेंद्र के मन में कौंध गया। भले ही बीसियों स्त्रियों के साथ संबंध रखो, पर घर वाली से छिपाए रखो, इसी में सच्ची नैतिकता है। परंतु भावोद्रेक में डूबा महेंद्र प्रमिला के बालों पर अपना गाल धीरे धीरे फेरता हुआ असीम संतोष का अनुभव कर रहा था। नाटक टुच्चा है, मैं टुच्चा नहीं, वह मन ही मन बुदबुदाया। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मांगो फिर। और प्रमिला हंस दी, पहले कहो माफ कर दिया। वाह जी, पहले भी कोई माफ करता है? पहले गुनाह कबूली होती है फिर माफी दी जाती है। पृष्ठ संख्या 25। और लोगों के सामने सकुचाने शर्माने वाली प्रमिला घर में कैसी बेधड़क बोलने लगती है और कभी कभी कैसी खिली खिली बातें करने लगती है। कहो माफ कर दिया, तब मुझे ढढ़ास मिल जाएगी, तब मुझे गुनाह कबूली का साहस मिल जाएगा। महेंद्र की आवाज में हल्का सा कंपन हुआ। प्रमिला को उस कंपन का भास पहले नहीं हुआ था। वह झट से महेंद्र की ओर मुड़ गई। हाय, क्या बात है, मुझसे क्यों छिपा रहे हो, कहीं नौकरी में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? प्रमिला की दृष्टि में गृहस्थ जीवन के मूल में नौकरी थी, फिर बच्चे थे, घर पर संकट आए तो पति और नौकरी का महत्व एक जैसा हो जाता है। क्या दफ्तर में कोई बात हुई है? महेंद्र ठिठक गया, कहे या ना कहे, चुप रह जाए या सब उसकी गोद में उड़ेल दे, पहले कहो माफ कर दिया। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, माफ कर दिया बस, अब कहो। तुम मुझे डरा रहे हो। और प्रमिला झट से उठकर बैठ गई। देखो मेरा दिल कैसे धक धक करने लगा है। और उसने महेंद्र का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। घूस ली है? तुम तो कभी घूस नहीं लेते थे। महेंद्र को ठीक ठीक शब्द नहीं सूझ रहे थे। मैंने घूस तो नहीं ली है प्रमिला, लेकिन तुमसे मैं एक बात छिपाता रहा हूँ। पर मैं वचन देता हूँ आगे ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो देवी हो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। क्या कह रहे हो बताओ भी ना। हमारे दफ्तर में एक लड़की है, वह डॉट डॉट वह मुझ पर डोरे डालती रही है और मैं डॉट डॉट मैं उससे मिलता रहा हूँ। कौन लड़की है? प्रमिला ने कहा और आवेश में उठकर बत्ती जला दी। तुम किसी लड़की के पास जाते रहे हो? बत्ती जल जाने पर महेंद्र कोहनी के बल अधलेटा सा बैठ गया था। उसके सिर के घने काले बाल प्रमिला के हाथ में सहलाए जाने के कारण बहुत कुछ उलझे हुए थे। मैं दो एक बार ही उसके पास गया हूँ, पर इस बात को मैंने तुमसे छिपाया है, बस इतना ही। पृष्ठ संख्या 26। मन की बात कह डालने पर महेंद्र को लगा जैसे मनोबोझ उसकी छाती पर से उतर गया है। वह आश्वस्त सा मानो घने बादलों में से निकलकर खिली धूप में आ गया हो। धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ प्रमिला की ओर देखे जा रहा था। प्रमिला कमरे के बीचों बीच खड़ी फटी आंखों से अपने पति की ओर देखे जा रही थी। तुम बड़े बुरे आदमी हो, उसके मुंह से निकला। कमरे में मौन छा गया। एक बोझल सा क्षण बीच में से फटा हुआ शून्य में जैसे लटकता रहा। तुम दूसरी स्त्रियों के पास जाते हो? प्रमिला को सूझ नहीं रहा था कि क्या कहे। तुम बहुत बुरे आदमी हो। मेरे पास आओ प्रमिला, मैंने वचन दिया है कि फिर ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ जब मरी थी तो मेरे पिता 30 बरस के थे। उन्होंने दूसरा ब्याह ही नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अपने बेटे बेटी को पालूंगा और तुम डॉट डॉट अभी तो मैं जीती हूँ। प्रमिला की प्रतिक्रिया को देखकर महेंद्र को धक्का सा लगा। उसे आशा नहीं थी कि प्रमिला इस बात को इतना बुरा मान लेगी। उसे भास हुआ जैसे कोई बनी बनाई बात बिगड़ गई हो और अब उसे जितना अधिक संभालने की कोशिश की जाएगी उतना अधिक बिगड़ती जाएगी। मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है प्रमिला, आजकल सभी करते हैं। मैंने केवल तुम्हें बता दिया है और लोग बताते नहीं, बस। महेंद्र ने सहज धीमी आवाज में कहा। सारा वक्त मेरे दिल को यह बात कुरेदती रही है। मैं कहता था प्रमिला की गोद में अपना सिर रखकर उसे सारी बात बता दूंगा, मगर तुम गए तो थे उसके पास। क्यों गए थे तुम? कितनी बुरी बात है, तुम गंदी किताबें पढ़ते रहते हो। तुम्हारे दोस्त भी बुरे हैं, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था। प्रमिला का चेहरा पीला पड़ गया था और फटी फटी आंखों से वह अभी भी महेंद्र के चेहरे को देखे जा रही थी। प्रमिला अपने पलंग की बाहीं पर बैठ गई। उसके हाथ कांपने लगे थे। तुम बहुत बुरे आदमी हो, वह बार बार कहे जा रहे थे। मैं समझे बैठी थी तुम शरीफ आदमी हो, बच्चों के हक में अच्छे हो, मेरे हक में भी अच्छे हो। मैं सतवंत से भी कहा करती थी कि तुम अच्छे आदमी हो, कड़वा बोलते हो पर हो अच्छे आदमी। आजकल कुछ पता नहीं चलता कौन अच्छा है कौन बुरा। पृष्ठ संख्या 27। धीमे धीमे मुस्कुराहट अब भी महेंद्र के होठों पर खेल रही थी। आज नहीं समझ पाएगी तो कल समझ लेगी। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसने मन ही मन कहा। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया है और लोग बताते नहीं। यह बात मेरे मन पर बोझ बनी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे कुछ छिपाए जा रहा हूँ जो मुझे छिपाना नहीं चाहिए। महेंद्र कहता गया, बहुत कम लोग होंगे जो आज के ज़माने में इस बात के लिए अपनी पत्नी से माफ़ी मांगेंगे। प्रमिला तुम आजकल के ज़माने को जानती नहीं हो। कौन है वह लड़की? प्रमिला की आवाज़ शिथिल पड़ गई थी। हमारे ही दफ्तर में काम करती है। छोड़ो अब इस चर्चा को, मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूँ प्रमिला, तुम नहीं जानती हो डॉट डॉट पर तुम सच मानना मैंने स्वयं उसे कोई बढ़ावा नहीं दिया था, वह खुद ही बड़ी तेज निकली। महेंद्र को सुषमा के बारे में पूछताछ अच्छी नहीं लगी। सुषमा बुरी नहीं थी, इस आत्म स्वीकृति के बाद तो जैसे सुषमा पर से भी बहुत सी मैल धुल गई थी और उसका चेहरा निखरने सा लगा था। मन की बात कह डालने के बाद महेंद्र के अंतःकरण में धूप सी खिलने लगी थी। सब ओर नहाया नहाया सा लगने लगा था। उसमें सुषमा जो घटाटोप बादलों में घिरी बैठी थी उस पर से भी बादल छट गए थे। महेंद्र को यह भी अच्छा नहीं लगा कि वह स्वयं सुषमा को दोषी बनाया जा रहा है। उसके हाथ में फाइल लेते हुए एक दिन जब इस नए संबंध का सूत्रपात हुआ था, उसी की उंगलियों ने बढ़कर सुषमा की उंगलियों को छुआ था और सुषमा की पलकें झुक गई थीं और गालों पर लाली दौड़ गई थी। बाद में महेंद्र ने पीछे हटने की कोशिश की थी, लेकिन एक कदम पीछे हटने के बाद वह दो कदम आगे बढ़ता जा रहा था। दफ्तर के निराले में कई बार अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए, एक पुलकन सी महसूस करते हुए, वह कांपती उंगलियों के साथ सिगरेट के कस लेता हुआ अक्सर यह शेर गुनगुनाया करता था। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कैसा हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। पलंग की पाटी पर बैठी प्रमिला ने अपना बाजू महेंद्र की ओर बढ़ाते हुए गहरी घबराई हुई सी आवाज में कहा, मेरे शरीर पर हाथ रखकर कहो, फिर उसके पास नहीं जाओगे। कसम खाओ, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें पप्पू की कसम, तुम फिर उसके पास नहीं जाओगे। पृष्ठ संख्या 28। तुमने बहुत बुरी बात की है। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर प्रमिला के बाजू को छू लिया, नहीं जाऊंगा। मैंने स्वयं जो तुमसे कह दिया है। पर उसे हल्का सा हीनता का भास हुआ और वह खिन्न सा महसूस करने लगा। अब की बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर फिर कभी उस औरत के पास नहीं जाना, यह बहुत बुरी बात होती है, पाप होता है। प्रमिला की ओर देखते हुए महेंद्र की नज़र में उपेक्षा उतर आई। कहीं मैं भूल तो नहीं कर बैठा? औरतों को एक कदम बढ़ने की जगह हो तो ये 10 कदम आगे बढ़ आती हैं। औरतों से कभी माफ़ी नहीं मांगो। पुराने जमाने से यह सीख चली आ रही है, पर इस समय महेंद्र अपने दिल का बोझ फेंक चुका था, इसलिए प्रमिला की बात सुनते हुए भी उसे खीझ नहीं उठी, बल्कि मुस्कुरा कर बोला, यह पाप्यपूर्ण सब बकवास है प्रमिला, मेरा इसमें तनिक भी विश्वास नहीं है। पर मेरे संस्कार बहुत गहरे हैं, उन्हीं के दबाव के कारण मैंने तुम्हें सब बता दिया है। मेरा पूरा हक है, जैसे मैं जीना चाहूँ जीऊँ, औरत का भी हक है। डॉट डॉट बस बस, प्रमिला ने आगे बढ़कर उसका मुंह बंद कर दिया। क्या बके जा रहे हो? महेंद्र हंस दिया। चलो, तुम ठीक, मैं गलत, मैंने पाप किया है। बड़े बड़े आदमी पाप कर बैठते हैं। हमारे तुम्हारे घरों में ही कितने लोग रोज यह पाप करते हैं। फिर मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। डॉट डॉट थोड़ी देर तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। महेंद्र बिस्तर में से निकलकर उठ खड़ा हुआ और देर तक कमरे में ऊपर नीचे टहलता रहा। वह उस हीनता के भाव को निकाल फेंकना चाहता था जो प्रमिला के साथ किए गए इस वार्तालाप से पैदा हो गया था। फिर वह सिगरेट सुलगा कर बरामदे में चला गया और देर तक वहाँ टहलता रहा। सुषमा के साथ मैत्री का संबंध तो बना रह ही सकता है, केवल मैत्री का संबंध। सेक्स का भूखा मैं भी नहीं हूँ। अपने संस्कारों का बहुत विरोध भी नहीं करना चाहिए, इससे भी जिंदगी का संतुलन बिगड़ता है। डॉट डॉट बहुत देर के बाद महेंद्र कमरे में लौटा। प्रमिला बिजली बुझा कर लेट गई थी। सो गई हो क्या? कहो क्या है, उसने धीमी थकी सी आवाज में कहा। महेंद्र ने अपने पलंग की पाटी पर बैठते हुए कहा, औरतों पर बहुत कुछ निर्भर करता है प्रमिला। औरत चाहे तो मर्द को, पृष्ठ संख्या 29, अपनी मुट्ठी में रख सकती है। और सच कहूँ प्रमिला, मर्द मुट्ठी में रहना चाहता है। प्रमिला कुछ नहीं बोली। सुन रही हो प्रमिला? सुन रही हूँ। तुम बड़ी सुंदर हो प्रमिला, तुम अपनी कीमत नहीं पहचानती हो। प्रमिला चुप रही। वह कहता गया, घर में भी अच्छे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। साड़ी पहनकर आओ तो छमछम करती, आओ जाओ। तुम एक ही लाल बिंदियों वाली कमीज पहने रहती हो और बाल बिखरे हुए। प्रमिला कुछ नहीं बोली। महेंद्र को लगा जैसे उसने कोई गलत बात कह दी है। एक बार औरत मर्द की मांगों को समझ ले, बुरी बात यह है कि हमारी स्त्रियां दकियानूस बहुत होती हैं, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, पतिव्रत और निष्ठा और पाप पुण्य की बेड़ियां, और वह उन्हें तोड़ना नहीं चाहती। डॉट डॉट प्रमिला आंखें खोले छत की ओर ताके जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे धीरे धीरे अंधेरा ओझल होने लगा है, साए घने होते जा रहे हैं। उसने गहरी सांस खींची जिससे छाती पर का कुछ बोझ हल्का हुआ। थोड़ी देर बाद महेंद्र के पलंग की ओर से खर्राटों की आवाज आने लगी, पर प्रमिला की आंखों में से नींद उड़ गई थी। उसकी आंखें अंधेरे में खुली पड़ी थीं और किसी किसी वक्त वह छाती पर से गहरे अवसाद का बोझ हल्का करने के लिए गहरी सांस खींच लेती।